आदित्य ने खड़े होकर उसे बाहों में उठा लिया और जोर से घूमने लगे। मैं गिर जाऊंगी, मुझे चक्कर आ रहा है। मनाल ने आदित्य के गले में बाहें डाल दी। आदित्य ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। तो फिर परमिशन है ना? तो मुझे, आदित्य ने प्यार से पूछा। अब हर बार परमिशन लेना जरूरी होता है? ये कहना ही परमिशन है। अजीब सा लगता है, कुछ बातें आंखों से भी समझ लेनी चाहिए। अब मुझे खाना भी बनाना है। टाइम देखो क्या हुआ है। आदित्य आप छोड़ो मुझे, अभी हम दोनों को कितना ही टाइम हुआ है, ऐसी बात क्यों कर रही हो? आज हम खाना ही नहीं खाएंगे। तब तो ठीक है, हम जहाँ से घर चले जाएंगे तो मुझे ऑफिस का कितना काम होगा, तब तुम मेरे साथ टाइम बिताने के लिए लड़ाई करोगी? अब मुझसे दूर भाग रही हो? आदित्य ने उससे शिकायत की। काम तो आप दिन में करना, रात को तो मेरी ड्यूटी निभानी है, समझे? और मैं आपसे लड़ाई नहीं कर रही, आप ही के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। घर जाने के बाद तो नौकर ही खाना बनाएंगे, आप मेरे हाथ के बनाए हुए खाने को तरसोगे। ठीक है, मैं भी तुम्हारी हेल्प के लिए आता हूँ, हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे, कहता हुआ आदित्य बिस्तर से खड़ा होने लगा। नहीं नहीं, रहने दो, मनाल ने जल्दी से कहा। क्यों, मुझे खाना बनाना आता है, एक बार बनाया था मैंने। पता है मुझे, जो आप मेरी हेल्प करेंगे मेरा काम बढ़ा देंगे, मैं अकेले ही खाना बनाऊंगी। क्यों, मैं तुम्हारा काम बढ़ाऊंगा? क्यों, बल्कि काम कम हो जाएगा, हम दो हो जाएंगे काम करने के लिए, आदित्य उसे समझाने लगा। पता है मुझे कैसे काम करते हैं आप, आपको तो कुछ करेंगे नहीं और मुझे भी काम नहीं करने देंगे। मनाल को पता था कि आदित्य किचन में उसके साथ खाना बनाने नहीं जा रहा, वो उसके साथ रोमांस करने जा रहा है। वो कभी उसके गाल पर किस करेगा तो कभी गर्दन पर, कभी उसे पीछे से बाहों में ले लेगा तो कभी किसी और तरीके से स्पर्श करेगा। अभी वे दोनों लड़ ही रहे थे कि आदित्य का फोन बजने लगा। देखा तो मेहर का फोन था। मेरे साले का फोन है, अगर तुम कहो तो उठा लूं, आदित्य के ऐसा कहने से मनाल ने आंखें निकाल कर देखा। ऐसे आंखों से क्यों डरा रही हो? अब साले को साला नहीं तो और क्या कहूंगा? प्लीज उठाओ ना फोन, क्यों टाइम पास कर रहे हो? उसने फोन उठा लिया। उसके बोलने से पहले ही मेहर बोला, जीजू जरा न्यूज चैनल तो ऑन करो, मैं आपको फिर फोन करता हूँ। इतना कहकर मेहर ने फोन काट दिया। इतनी जल्दी बात हो गई, मुझे भी बात करनी थी। मेहर फोन करेगा वापस, अभी उसने न्यूज चैनल देखने के लिए कहा है। मनाल उठकर टीवी लगा दिया। जब उन्होंने न्यूज चैनल ऑन किया तो सामने वही मॉडल जिसने आदित्य पर रेप का इल्जाम लगाया था, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वो कह रही थी, आदित्य ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, मुझे किसी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, इसलिए आदित्य पर इल्जाम लगाए। मैं अपना केस भी वापस ले रही हूँ, झूठा इल्जाम लगाने पर जो मुझे सजा मिलेगी मैं वो भी सहने को तैयार हूँ। टीवी चैनल्स पर पत्रकार अलग अलग तरह के सवाल पूछ रहे थे, वो हर सवाल का जवाब दे रही थी। इल्जाम लगाने के बाद आप एकदम गायब ही हो गई, अब अचानक आप सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं? एक पत्रकार ने उस मॉडल से पूछा। असल में जो आदमी ये सब कर रहा था, जो आदित्य को ब्लैकमेल करना चाहता था, उसने मुझे कहीं पर बंद कर रखा हुआ था, मैं मुश्किल से वहां से छूट कर आई हूँ। ऐसे बहुत सारे सवालों के वो एक एक करके जवाब दे रही थी। खबर देखने के बाद आदित्य ने मेहर को फोन लगाया। ये तुमने कैसे किया? इस मॉडल को ढूंढने के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, ये तो एकदम से गायब ही हो गई थी, कहाँ से मिली? मेरे आदमियों ने इसे हर तरफ ढूंढा था मगर कहीं नहीं मिली। ये आपको सब कुछ बताऊंगा मैं, एक बार आप यहाँ आ जाइए। आप अपनी सिक्योरिटी को फोन कीजिए ताकि वो जल्दी से आपको यहाँ ले जाएं। अब आज आपको भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, अब टाइम आ गया है जब आपको प्रेस के सामने खुद को बेकसूरी साबित करना है। वो तो ठीक है, फिर भी ये तुम्हें कहाँ से मिली है? प्लीज मेहर, मुझे पूरी बात बताओ, सस्पेंस मत करो तुम। ठीक है, बताता हूँ मैं आपको। मैंने आपको और मनालदी को छुपाया था, तो मैंने कहाँ छुपाया? मुझे तुम्हारे ही घर में। तुमने अपने ही घर में रखा है हम दोनों को? अपने ही घर में, सही बात है ना? पहले मैंने उन लोगों को ढूंढा जो लोग इसके पीछे थे, उन्हें ढूंढने के बाद मैं इस प्रिया मल्होत्रा तक पहुंचा। कौन थे वो लोग, जरा खुलकर बताओ। देखो मेहर, मुझे जल्दी से सारी बात बताओ। तो ठीक है जीजू, सुनो सारी बात। आपके नाना जी, मतलब आपकी माँ के पिता, दो भाई थे, एक जो आपके नाना थे जिनके बारे में तो आपको सारी जानकारी है, एक उनसे छोटे थे। आपके नाना ने बहुत काम किया, बहुत प्रॉपर्टी बनाई, मगर आपके नाना के भाई की बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो सीधे साधे आदमी थे, उन्हें दूसरों की सेवा करना बहुत पसंद था। उन्होंने घर छोड़ दिया था, वो एक आश्रम में रहने लगे, उन्होंने शादी भी नहीं की थी, वो बहुत ही संत स्वभाव के थे। उनके अपने स्वभाव की वजह से धीरे धीरे वो आश्रम के मुखिया बन गए, लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। उन्होंने वहां पर एक अनाथ लड़का भी गोद ले लिया था जिससे वो बहुत प्यार करते थे। जब वो लड़का बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि आपके नाना का संबंध इतने बड़े खानदान से है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है उनके खानदान के पास, मगर उस लड़के को कुछ नहीं मिला था, उसकी नज़र आपके खानदान की प्रॉपर्टी पर थी। तब कहीं से उस लड़के को आपकी नानी की वसीयत का पता चला। आपकी नानी की वसीयत के अनुसार अगर आपका अपनी पत्नी से तलाक हो जाता है तो सारी प्रॉपर्टी आश्रम को मिलेगी,
क्योंकि आपके नाना के बाद अब वो लड़का ही वहाँ का करता धरता था। तो वो कोई प्लान बना रहा था जिससे आप और आपकी पत्नी का तलाक हो जाए, फिर वो सारी प्रॉपर्टी आश्रम को चली जाए, और आश्रम का मुखिया जब वो है तो सारी प्रॉपर्टी उसी के पास जाएगी। वो अपनी कोशिश में लगा हुआ था कि कैसे वो प्रॉपर्टी उसे मिल जाए, मगर प्रॉपर्टी तो उसे तब मिलेगी जब आपका तलाक होगा। जब आपकी शादी ही नहीं की थी तो आपका तलाक कैसे होता, इसलिए वो चुप रहा। इसी दौरान आपकी शादी मनालदी से हो जाती है। फिर उसकी मुलाकात उन लोगों से होती है जिनकी नज़र मेरी फैक्ट्री और आपकी मनाल पर थी। मनालदी के दुश्मन और आपके दुश्मन दोनों हाथ मिला लेते हैं। मनोहर लाल को मनालदी चाहिए थी और उस लड़के को आपकी प्रॉपर्टी, तो आप दोनों का तलाक हो जाता तो सारा काम आसानी से हो सकता था। मनालदी आपसे दूर हो जाती और जब आप मनालदी से तलाक लेते तो प्रॉपर्टी आपके पास से चली जाती, उस आश्रम को। फिर दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। उन्होंने सोचा मनाल और आपका तलाक हो जाए, वो लोग नानी की प्रॉपर्टी को आधा आधा बांट लेंगे। मगर तुम्हें ये सब कैसे पता चला और ये मॉडल कहाँ से मिली?
जीजू, जब मुझे मनाल ने आपकी शादी की पूरी कहानी बताई और साथ में मुझे ये भी बताया कि आप तलाक भी नहीं ले सकते क्योंकि नानी की प्रॉपर्टी ऐसे ही चली जाएगी, तो मेरे मन में कुछ खटका हुआ। आपके लिए नानी की प्रॉपर्टी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, मगर किसी दूसरे इंसान के लिए उस प्रॉपर्टी की कीमत बहुत थी, करोड़ों की जायदाद थी वो। मुझे लगा उस मॉडल की कहानी इस प्रॉपर्टी से जुड़ी है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि मनाल किसी भी कीमत पर अब आपके साथ नहीं रहेगी। तो मैंने उस लड़की को ढूंढना शुरू किया। असल में जब मैंने इस मॉडल के घर की तलाशी करवाई तो मुझे मनोहर लाल के साथ उस मॉडल की एक फ़ोटो मिली, तो मैं समझ गया कि इसका मनोहर लाल से कोई कनेक्शन है। इस सब के पीछे मनोहर लाल हो सकता है जो मेरी फैक्ट्री के पीछे पड़ा था। उस तलाशी के दौरान मुझे उस मॉडल और उसके साथ कई फ़ोटो मिली, तो मैं समझ गया कि वो लड़की उसी की गर्लफ्रेंड है। जब मैंने आपकी ही टीम से आश्रम की तलाशी करवाई तो वहाँ पर एक कमरे में मुझे बंद की हुई ये मॉडल मिली। वो बहुत बुरी हालत में थी, मैं उसे छुड़वा कर ले आया। तो ये रही आपकी पूरी स्टोरी। मगर हाँ, अधिराज भाई की हेल्प के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। आश्रम में मुझे अधिराज भाई ने ही पहुँचाया था। अगर ये लोग पकड़े ना जाते तो आगे इनके बहुत सारे प्लान थे, इसमें मेरी फैक्ट्री भी शामिल थी। वैसे मेहर, मानना पड़ेगा तुम्हें, बहुत बड़ा काम किया है तुमने। पहुंची हुई चीज़ हो तुम। तुम इतना बड़ा काम कर सकती हो, मैंने सोचा नहीं था। नहीं, दिमाग तो चाहे मेरा था पर मेरे पास इतने साधन नहीं थे कि मैं ये सब कुछ कर सकता। आपने अपनी टीम मुझे काम करने के लिए दी, इसी वजह से ये सब हो सका। आपने भी मेरे ऊपर बहुत यकीन किया। तो ठीक है, आप लोग पहुँच जाइए, फिर बात करते हैं आपसे। और हाँ, आपकी बेल भी हो चुकी है, अब आपको गिरफ्तारी का कोई डर नहीं। इस सारे काम में वकील मोहन मित्तल ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। अगर वो ना होता तो शायद मैं अकेला ये काम कभी नहीं कर सकता था।